सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत आज यहाँ राजस्थान के इस झुंझुनू शहर में कई वर्षों के बाद फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था कि करीब 21 बरस से ऊपर का समय हो गया है जब पिछली दफ़ा यहाँ आने का अवसर मिला था, और इतने लंबे अंतराल के बाद यहाँ आकर आप सभी के दर्शन करके बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। जहाँ आप सभी मिल बैठकर सुंदर भावनाओं से युक्त होकर, भक्ति भावनाओं से युक्त होकर इन घड़ियों को बिता रहे हैं, जिसके कारण एक सुंदर वातावरण में हम सुकून महसूस कर रहे हैं। ऐसे उस सुंदर अमोलक वचन श्रवण करने को मिल रहे हैं, जो एक एक वचन बहुत मूल्यवान है, जिसके लिए महापुरुषों ने कहा कि ऐसे वचन रत्नों की खान हुआ करता है, और ऐसे वचनों से लाभ उठा लेते हैं वो जो उनकी तरफ गौर करते हैं, और फिर जो उनमें कहा जाता है उसको करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। जो संतों महात्माओं की वाणी जो लगातार युगों युगों से इंसानों तक पहुंची है, उस सब में इंसान को कुछ करने लायक कार्य जो हैं वो बताए गए हैं। इस समोलक जन्म को पाकर, हीरे जैसे जन्म को पाकर, इंसान ने अपने मालिक खालिक के साथ नाता जोड़ना, इस मालिक की पहचान करनी, जो आत्मा का मूल है, ऐसे मूल का बोध हासिल करना, इसीलिए यहाँ पर राजस्थानी भाषा में क्या, या अंग्रेज़ी, हिंदी, पंजाबी में, किसी हरियाणवी भाषा में, तो अलग अलग भाषाओं में जो संदेश, जो पैगाम दिया जा रहा है, वो वास्तविकता में इंसानों के लिए है, ताकि इंसान अपने अमोलक जन्म का पूरा पूरा लाभ उठाएं। इस संसार में करोड़ों करोड़ों लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं और अपनी उम्र बिताकर यहाँ से रुखसत हो जाते हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा महापुरुष सामने यही लाते हैं कि आखिर इंसान कितने हैं जो जीवन का ध्येय जानते हैं, जो जानते हैं कि जीवन का असल मकसद क्या है, किस कारण इस जन्म को पाना भाग्य की बात मानी गई है, वो कार्य करने लायक कौन सा है जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। क्या इस शरीर में आकर केवल लोक की ही सोची जाएगी, या परलोक का भी ध्यान होगा? क्या केवल शरीर की ही सोच रहेगी, या आत्मा के उद्धार की भी कभी ख्याल आएगा? और अक्सर संसार में हम जो देखते हैं, तो अक्सर इंसान शरीरों तक सीमित रह जाते हैं, और शरीर के लिए ही सारे उम्र लगा देते हैं, उसी शरीर के लिए जो हमेशा कायम रहने वाला नहीं है, जो खाक का पुतला, खाक की ढेरी में अवश्य तब्दील होता ही होता है, किसी का भी लिहाज नहीं है। मनाने को हमने अभी रामनवमी भी मनाई, राम जी के जन्म उत्सव मनाए, इसी तरह से वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों के जन्मदिन मनाए जाते हैं, लेकिन महापुरुष वो सत्य का भी बयान देते हैं कि राम गयो रावण गयो जाका बहु परिवार, कहो नानक थिर किछ नहीं सुपने ज्यों संसार। कि यहाँ पर ये नहीं कि केवल रावण प्रवृत्ति वाले ही संसार से कूच करते हैं, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम आखिर शरीर से नाता उनका भी टूटा, क्योंकि जैसे महापुरुषों के कथन के राम गयो रावण गयो, तो यहाँ पर कोई रहता नहीं है। यानी कि संसार में आकर जो केवल और केवल शारीरिक तल तक जीते हैं वो कभी भी अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर पाते हैं। और ये जन्म पाना भाग्य की बात इसीलिए माना गया क्योंकि ये सुनहरी अवसर के रूप में ये देखा गया है, क्योंकि इंसानी जामा मिला इसी में ही ये संभावना है, यही एक संभव है, जबकि आत्मा अपने जन्मों जन्मों की अज्ञानता दूर कर सकती है, आत्मा अपने निज घर की प्राप्ति कर सकती है, आवागमन के बंधन से निजात पा सकती है। शरीरों के सिलसिले तो चंद बरसों के हैं, लेकिन आत्मा का सिलसिला चंद बरसों का नहीं है। लेकिन वही बात के जिसका सीमित सा सिलसिला है उसके लिए सारी उम्र इंसान लगा देता है, वहीं तक सीमित रह कर इस जिस्म तक सीमित रह के। और आत्मा जिसकी लंबी यात्रा है उसकी तरफ ध्यान जाता नहीं है, इसीलिए महापुरुषी हैं जो बार बार ध्यान दिलाते हैं, महापुरुषी हैं जो झिंझोड़ते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, कि जाग जाहे मुसाफिर। और मुसाफिर शब्द का मतलब ही अपने आप में यही है कि जो सफ़र में है, जो एक जगह पर टिकता नहीं है, उसका टिकाना इस तरह से नहीं है, क्योंकि इस संसार को बजाते खुद ही एक सराय कहा गया है कि ये जग ये संसार जो है ये सराय है, और सराय में कब है कोई हमेशा रह रहा है। सराय कहते ही उसे हैं कि रात को ठहरे सुबह चले गए आगे बढ़ गए। तो ये संसार भी सराय के मानिंद है, और यहाँ पर भी हमेशा कोई रहता नहीं है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सीमित सी यात्रा इस शरीर की, और उसके लिए इतना कुछ इंसान जतन और प्रयास करता है लेकिन आत्मा का कभी सोचता नहीं है। तो इसीलिए महापुरुषों ने ही झिंझोड़ा, महापुरुषों ने ही जगाया इस गफलत की नींद से, ताकि इंसान जाग जाए और अपना उद्धार कर ले। सोए सोए तो लुट जाता है, अगर इस गफलत की नींद में ही रहता है जो जब भी रहा तो वही लुटा है, उसी ने अपना लोक भी गवाया परलोक भी गवाया। वही है जिसने जीवन के ध्येय को तो क्या पाना था उससे कहीं दूरी बनाए रखी, क्योंकि वो गफलत की नींद में रहा, क्योंकि वो हकीकत से उसका सामना ना हुआ। तो ये रोशनी के बगैर अंधकार में जीवन इंसान ताउम्र जीता रहा, अज्ञानता में रही आत्मा ये भी अंधकार में रही, और मन का भी अंधकार मिटाया नहीं। यानी कि दोनों लिहाजों से एक नुकसान ही अपने किए। तो महापुरुष संत जन वो यही पैगाम यही संदेश ये देते आ रहे हैं कि इंसान ये सुनी अनसुनी मत करो कि कान में आवाज़ पड़ी और दूसरे से निकाल दी। और ऐसा करने वाले बहुत नुकसान का सौदा करते हैं, किसी और का नहीं अपना ही नुकसान करते हैं, जो ये सुना अनसुना कर देते हैं, जो सबसे लाजिम कार्य है उस तरफ कदम बढ़ाते नहीं हैं, और जिस तरफ बढ़ाते हैं उनका हरि की दरगाह में कोई मोल नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए कहा है कि जिन्नी कमी नाई गुण से कमड़े विसार, कि जिन कामों में कोई महत्ता नहीं है उनकी, तो उसमें काहे को उलझा हुआ है। तो ये अवसर तुझे मिला है सुनहरी, ये वो प्राप्त करने के लिए है जो सबसे उत्तम है, वो कार्य करने के लिए ये अवसर मिला है, जो कार्य करने से इंसान दोनों जहानों की बाजी तो जीत सकता है। तो ऐसी जहानों दोनों की बाजी जीतने वाले युगों युगों से अपना नाम रोशन उन्होंने किया, और वही हैं जो औरों को भी ये संदेश देते चले गए कि इंसानों तुम भी जागो, ये सोने का वक्त नहीं है, ये जागने का वक्त है। अब रहने कहाँ जो सोवत है, अभी ये रात्रि नहीं है कि तू सोया हुआ है, अब दिन चढ़ गया है। दिन चढ़ गया का मतलब कि अभी तू रैन नहीं है, यानी कि अभी तू पशु या जानवर वाली योनि में नहीं है, अब सवेरा हो गया है, यानी कि अब तुझे मानुष तन मिल गया है, मनुष्य जन्म मिल गया है। उस रूप में इसको कहा कि अब ये सुबह हो गई है। एक और लिहाज से दास अक्सर वो कबीर जी के पंक्तियाँ और मिसाल देता है, जो उन्होंने यही ध्यान में रख कर भाव रखे कि एक वृक्ष पेड़ के ऊपर पंछी बैठा हुआ और वृक्ष को आग लग जाती है, पेड़ को आग लग जाती है, और पेड़ को आग लगती है तो पेड़ वो वृक्ष वो पंछियों को क्या कह रहा है, वो वृक्ष पंछियों को कह रहा है कि हम तो दाफत पंख बिन तुम दाफत हो काहे, वो पेड़ वृक्ष कह रहे हैं कि हम तो जल रहे हैं, हमारा बचाव नहीं हो सकता कि हमारे पास पंख नहीं है, तो हे पंछियों तुम क्यों मूर्खता कर रहे हो, तुम्हें तो पंख दिए हैं मालिक ने, और फिर भी तुम ऐसे ही बैठे हुए हो, हमारे साथ तुम जल जाओगे, हमें आग लग चुकी है और तुम भी इसी टहनी पर बैठे रहोगे तो तुम भी जलोगे, तुम बच सकते हो, तुम्हारे पास पंख है, तुम उड़ान भर सकते हो, हमें मालिक ने नहीं बख्शे पंख तो हम तो जलेंगे ही जलेंगे। तो इसी की बात फिर से वही आएगी कि जैसे कि वो वृक्ष उन योनियों के लिहाज से उनको देखें, और दूसरी तरफ पंछी वो मानव योनि वाला है तो वो अन्य योनि वाला मानव योनि वाले को कह रहा है कि हम तो दाफत पंख बिन तुम दाफतों का है, कि इस प्रकार से तुम तो अपना बचाव कर सकते हो, यानी कि इंसानों को कितने ढंगों से ये बात समझाने के प्रयास हो रहे हैं और युगों युगों से प्रयास किए गए ताकि इंसान इस असल बात को समझे कि उसने क्या काम करना है, उसने जीवन का ध्येय कैसे पूरा करना है, और पहले तो ध्येय की ही पहचान करनी है, लक्ष्य की पहचान करनी है। अगर लक्ष्य का ही नहीं पता तो फिर खाक वो उसके इंतज़ाम करेगा, अगर लक्ष्य का ही नहीं पता है तो उस तरफ खाक उसके कदम बढ़ेंगे। तो इसलिए महापुरुष ये भी बताते हैं कि हमारे जीवन का असल लक्ष्य क्या है। निंद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान, ये निंद्रा कर लेनी, भोजन कर लेना, भोग कर लेना, भय खा लेना, ये तो इंसान अन्य योनियों में भी है, तो ये तो तेरा ध्येय हो नहीं सकता, ये तेरा लक्ष्य हो नहीं सकता। अगर यही होता तो फिर बड़े भाग मानुष तन पावा ये कहने की ज़रूरत नहीं थी, फिर तो कोई सा भी जन्म मिल गया मुबारक है, फिर तो कोई सी भी योनि में आ गए मुबारक है। अन्य योनियों के लिए क्यों नहीं कहा कि बड़े भाग शेर तन पावा या चीता तन पावा या बकरी तन पावा, किसी योनि के लिए नहीं कहा है, केवल और केवल इंसानी योनि को पाना, इस जन्म को पाना, उसके लिए कहा है कि बड़े भाग्य मानो स्तन पावा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि महापुरुष संत जनों ने आत्मा के कल्याण के ऊपर कितना जोर दिया है ताकि इंसान इस प्रकार से अपना संसार में आया हुआ सफल कर लें, ये विफल ना रहे आना संसार में, ये बाजी हार के ना जाएं, ये शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े है जब हिसाब मांगा जाएगा, ये इंसान मुख उजला करके संसार से जाए, जन्मों जन्मों का बोझ उतार कर जाए, और अगर नहीं जागता गफलत की नींद से, अगर नहीं नाता जोड़ता इस मालिक से, अगर सच की लगता नहीं करता, तो फिर ये बोझ बढ़ा के जाता है। वक्त तो मिला था बोझ से निजात पाने के लिए, मौका सुनहरी अवसर मिला था जन्मों जन्मों का भार उतारने के लिए, लेकिन ऐसा कदम ना उठाने के कारण बोझ उतरने तो क्या थे और बढ़ा लिए। जितना ये जीवन जिया इसमें बोझ और बढ़ा लिए, बंधनों से निजात पानी थी बंधन और बढ़ा लिए, तो कैसी नादानी इंसान ने की। और ये नादानी किसी एक युग वाले के नहीं, हर युग में ऐसे नादान हुए हैं, और कलयुग में वर्तमान का युग और इसमें तो और ज़्यादा हम बहुतात देख रहे हैं जो ऐसी नादानियां करते चले जा रहे हैं, जो एक जागरूक नहीं हो रहे हैं, जो सच की लगता नहीं कर रहे हैं, इस परमात्मा से नाता नहीं जोड़ रहे हैं, इसका बोध हासिल नहीं कर रहे हैं, और ना ही उनको जीवन जीने का सलीका आया है, ना आत्मा का कल्याण किया है, ना मन में रोशनी स्थापित की है, दोनों ही अंधकार में हैं। मन भी रोशन नहीं हुआ, इसीलिए इसी मन को लिए हुए ऐसे ऐसे भाव से युक्त होकर इस संसार में विचरण कर रहे हैं, जो भाव एक गिरावट वाले भाव हैं, जिन भावनाओं के होते हुए हम कभी भी ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिन भावों से युक्त होकर हम विचरण करते हैं, वो भाव हमारा पतन करते हैं, एक हमें गहरी खाई में गिराने वाले होते हैं, वो हमें शर्मिंदगी दिलवाते हैं, वो हमें अपयश दिलवाते हैं। ऐसे भाव से युक्त होकर इस संसार में विचरण करते हैं, तो वो भी एक मूर्ख था, एक नादानी के रूप में वो देखा जाता है। तो आओ साध संगत, कहने का तात्पर्य यही है कि महापुरुष संत जनों ने, भक्त जनों ने हर इंसान को ये पैगाम दिया है, किसी एक भाषा वाले के लिए नहीं है, किसी एक जाति वाले के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए इसकी अहमियत है। जैसे सूर्य की किरणों की हर किसी को ज़रूरत है, ये नहीं है कि पगड़ी वालों के लिए है और टोपी वालों को कोई ज़रूरत नहीं है। एक जो पंजाबी है उनके खेत के लिए सूर्य की किरणों की आवश्यकता है, और कोई अल्लाह का नाम लेने वाला है तो उसके खेतों को ज़रूरत नहीं है। जैसे कुदरत के नियम हर किसी के ऊपर लागू हो रहे हैं, इसी तरह से ये जो नियम है ये भी यूनिवर्सली लागू होता है, और यूनिवर्सली ही नहीं बल्कि हर काल हर युग वालों के ऊपर लागू रहा है कि वास्तविकता में इस संसार में आकर इंसान अगर ये सच का बोध हासिल कर लेता है तो उसकी आत्मा का कल्याण होता है, अगर नहीं करता है तो फिर वो आवागमन के बंधन में उसकी आत्मा पड़ी रहती है। जम जम मरे मरे पुन जमे, बहुत सजाए पे आदेश लम्हे, कादर करीम ना जाना जे तो तिल पीड़े जो कहानियाँ, कि इस प्रकार से वो फिर आवागमन के बंधन में पड़े रहते हैं कोलू की बैल की तरह, कि कोलू का बैल भी इसी तरह से वो तिल ही पीटता रहता है और वो एक ही जगह पर बंधा रहता है, वो कहीं पहुंचता नहीं है, चल रहा है लेकिन पहुंचता नहीं है। तो आओ साध संगत, कहने का तात्पर्य यही है कि महापुरुष संत जन भक्त जनों ने जो संदेश पहले दिए, आज भी वही संदेश दिया जा रहा है, आज भी वही पैगाम दिया जा रहा है, ताकि इंसान लाभ उठा सकें, ये नुकसान ना करें अपना, क्योंकि अवसर फिर नहीं मिलने वाला है। ये बार बार ये इंसानी जन्म मिलता नहीं है। मानव जन्म दुर्लभ है, होत ना बारंबार। जो फल पाके भोय गिरे बौर न लागे डार। कि एक पेड़ की टहनी पर फल लगकर ज़मीन पे गिर जाता है तो लाख कोशिश करे इंसान वो फिर से वापस उसको नहीं लगा सकता है। तो इतना दुर्लभ जन्म मिला है, मालिक ने बख्शा है, तो इसका लाभ उठाएं। इस जीवन को यूं ही नष्ट ना करें। अंधकार में रहकर केवल जिस्मानी खेल खेलते हुए, केवल दुनियावी प्रलोभनों का पीछा करते हुए, हिरसो हवस में रहकर निंदा बखीली करते हुए, वैर ईर्ष्या नफरत की आग में जलते जलाते हुए, मार काट करते हुए, शोषण करते हुए, दूसरों के हक को छीनते हुए, घरों के वातावरण को नरक बनाते हुए, समाज में कुरीतियों को बढ़ाते हुए, इस तरह से जीवन जी रहे हैं तो ये खाक जीवन है। खाक मोल डाला है अपने श्वासों का, कतई कोई मोल नहीं डाला उन्होंने जिन्होंने अपने कदमों को संभाला नहीं, जिन्होंने समय रहते हुए अपने आप की संभाल नहीं की, वक्त की संभाल नहीं की, इन श्वासों की पूंजी को सही ढंग से इन्वेस्ट नहीं किया, इसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, तो वो वास्तविकता में नुकसान के ही सौदे करते आए हैं। और वही नुकसान आज संसार में हम होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि नफरत देख रहे हैं, घृणा देख रहे हैं, वैर भावनाएं देख रहे हैं। इसीलिए एक जाति वाला दूसरे से नफरत कर रहा है, एक मज़हब वाला दूसरे से नफरत कर रहा है, एक पैगंबर को मानने वाला दूसरे के मानने वाले से घृणा कर रहा है, ऊंची जाति वाला नीची जाति वाले से घृणा नफरत कर रहा है, एक भाषा वाला दूसरे भाषा वाले से घृणा कर रहा है, एक संस्कृति वाला दूसरे संस्कृति वाले से घृणा कर रहा है, गोरे रंग वाला काले रंग वाले से नफरत कर रहा है। साउथ अफ्रीका में हमने देखा, जहां महात्मा गांधी जी जहां पर वहीं पर रहकर कैसे झटका उनको लगा, और उसी के परिणाम स्वरूप आज़ादी की लहर उन्होंने छेड़ दी। यानी कि रंग नस्ल के आधार के ऊपर भी घृणा वैर ईर्ष्या, हर लिहाज से घृणा और वैर की आग में जलते रहते हैं, जलाते रहते हैं। और जब घृणा हो जाती है तो फिर हिंसा होगी ही होगी, जाति के नाम पर भी हिंसा होगी, मज़हब मिल्लत की दीवारें खड़ी करके भी होंगी, पैगंबरों के नाम पर भी होंगी, त्योहारों के आधार पर भी होंगी। और ये हो रहा है। सबसे बड़ा सबूत तो अपने ही देश में, कोई अमेरिका कनाडा जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई चाइना जापान जाने की ज़रूरत नहीं है, ये घर में ही हमें वो अंधकार नज़र आ रहा है। अपने हिंदुस्तान में हमें ये सब दीवारें नज़र आ रही हैं। यहीं पर जाति पाति का सवाल सबसे बड़ा सवाल है, ना अमेरिका में है, ना कनाडा में है, ना इंग्लैंड में है, ना यूरोप में है, ना चाइना में है, ना जापान में है, कहीं पर भी ये जाति पाति वाली बीमारी नहीं है जितने हिंदुस्तान में है। और ये भी कितनी दुखदायी बात कि इसी हिंदुस्तान में हम दावे करते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ गुरु पीर पैगंबर हुए, और वही हैं गुरु पीर पैगंबर जो कदम कदम पर बता रहे हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजे सुहर का होई, कि जाति का गर्व मत कर मूर्ख गंवारा, इस गर्व ते उपजे बहुत विकारा, कि जाति पाति का गर्व अभिमान मत कर, जाति पाति के नाम पर दीवारें मत खड़ी कर, सब में एक ही नूर बसता है, ये मालिक खालिक हर घट में है। तो ये उन्हीं गुरु पीर पैगंबरों के संदेश हैं, यही उन्होंने बयान किए हैं। लेकिन हम उनकी जय तो बुला देंगे, लेकिन हरगिज़ उस बात को नहीं मानेंगे जो उन्होंने कही, क्योंकि वो जागरूकता हम में आई नहीं। इसीलिए हम जाति के नाम पर भी नफ़रत करते हैं, हम मज़हब के नाम, धर्म के नाम पर भी नफ़रत करते हैं, हम फिर हिंसक भी होते हैं और फिर मातम फैलाते हैं, वीरानगी ले आते हैं। जिस धरती को खिली हुई गुलजार बनाना था, यहीं पर हम वीरानगी लाते चले जाते हैं, एक मातम फैलाते चले जाते हैं। कितने एक मांग सुनी हो जाती हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, और अनाथ तो क्या, बल्कि मासूम बच्चों की भी जाने लेने से गुरेज नहीं, दूसरे की जाति के आधार पर, दूसरे के मज़हब के आधार के ऊपर। वो छोटा सा नन्ना सा बच्चा भी ज़िंदा जलाने में कोई गुरेज नहीं है। तो इस प्रकार से ये गिरावट ये हमें देखने को मिलती आ रही है। 21वीं सदी में पहुंच गए हैं तो कौन सी सदी में जागेंगे? कितने हमने तरक्कियां कर ली हैं, कितने सामान जुटा लिए हैं, कितने प्लैनेट्स तक पहुंच गए हैं, अभी नहीं जागे तो कब जागेंगे? क्या अभी भी वही उसी अंधकार में वही पिछड़ापन कायम रहेगा हमारा? कब हम आगे बढ़ेंगे, कब हम सच्चाई में स्थित होंगे, कब हम अवगत होंगे हकीकत से, कब हम अपने जीवन में रोशनी लाएंगे? तो आज महापुरुष वही निमंत्रण दे रहे थे। छोटा बच्चा या जवान वो यही निमंत्रण दे रहा था कि इंसानों तुम ज़रूर वो कदम बढ़ाओ, करो बिरंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हरी लाहा, आगे बसे सुहेला। कि हे इंसान तुम जागो और संतों का संग करके ऐसा लाभ प्राप्त कर लो कि ये लोक में भी मालामाल रहो और परलोक भी सुहेला हो जाए। तो इस प्रकार से ये संदेश, ये पैगाम ये दिए जा रहे हैं। जैसे राजस्थान में आज भी आपने राजस्थानी में कितने भाव श्रवण किए, और दास अक्सर वो एक पंक्ति राजस्थान में बोलता है कि आँखें खोलो भाई रा, कान्या रे खिड़की खोलो रे, कि अपनी आँखें खोलो, ये कानों की खिड़की खोलो, आँखों की खिड़की खोलो, ये किवाड़ खोलो, देखो सच्चाई को, सुनो वो वचन जो वास्तविकता में हमारा उद्धार कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये आँखों से देखो, यानी कि ज्ञान की दृष्टि से देखो, ज्ञान की दृष्टि से देखो इस सर्वव्यापी परमात्मा को। ज्ञान की दृष्टि ही तो दी गई थी अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में, जिसके कारण वो दसों दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो गया था। इसी तरह से हमारी भी आँखों की खिड़की खुले, हम भी वो ज्ञान दृष्टि प्राप्त करें, और उसी ज्ञान की दृष्टि से हम इसके दर्शन कर सकते हैं। यही जो निराकार पारब्रह्म परमात्मा है, यही जो अजन्मी परम सत्ता है, यही है जिसको कोई बनाने वाला नहीं, यही है जिसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसको वायु सुखा नहीं सकती है, यही वो परम सत्ता है, यही है जो सबसे विराट है। जिस विराट के दर्शन भगवान कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में मैदान में करा रहे हैं, उसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। तो आज भी यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान का जिक्र हो रहा है, ज्ञान का जिक्र हो रहा है, एक दर्शन का जिक्र हो रहा है। तो अब साध संगत, कहने का तात्पर्य यही है कि महापुरुष भक्त जन संत जनों ने कभी भी कोई कमी नहीं रखी है ये संदेश देने में, लेकिन कमी रही है तो उनकी तरफ से रही है जिन्होंने गौर नहीं किए हैं, जिन्होंने सुना अनसुना किया है, जिन्होंने एक झूठ के ही खेल खेले हैं, जिनको विष ही पसंद है, अमृत को ग्रहण नहीं किया है। तो वो वही लोग हैं जिन्होंने अपना उद्धार नहीं किया, अपना कल्याण नहीं किया, वातावरण को भी विषैला किया, दूसरों के जीवन में भी विष घोलते चले गए और हाहाकार मचाते चले गए। ये वही हैं अंधकार के स्वरूप, और दूसरी तरफ उजाले के स्वरूप, उजाले के प्रतीक, वो जो जाग गए, जिन्होंने बोध हासिल कर लिया, जिन्होंने आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ लिया इस जीवन काल में, जिन्होंने समदृष्टि से युक्त कर लिया अपने आप को, जिनके लिए कोई पराया कोई बेगाना ना रहा, जो हर किसी को अपना जानकर अपना मानकर हर किसी के लिए भलाई के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते चले गए, वो उजाले के प्रतीक हैं। तो अंधकार के भी प्रतीक, उजाले के भी प्रतीक, फूलों के समान भी, कांटों के समान वाले भी। तो इस तरह से ये दोनों ही प्रकार के लोग इस दुनिया में रहे हैं और आज भी ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के लोग इस संसार में विचरण कर रहे हैं। एक वो जो मानवता इंसानियत में स्थित हो चुके हैं, जो प्यार की गंगा बहाने में योगदान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वो भी लोग हैं जो खून की नदियां बहाने में यकीन रखते हैं, जो मातम फैलाने में यकीन रखते हैं, जो दूसरों को उजाड़ कर खुशी की महसूसियत करते हैं, वो भी लोग हैं। लेकिन अहमियत किन लोगों की है, किन प्रकार के लोगों की है, वो फैसले भगवान राम ने भी दिए हैं, वो फैसले हज़रत मोहम्मद साहब ने भी दिए हैं, वो फैसले भगवान कृष्ण ने भी दिए हैं, वो फैसला श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी दिया है, वो फैसला मीरा बाई ने भी दिया है, वो फैसला तुकाराम जी ने भी दिया है, वो फैसला मुक्ता बाई ने भी दिया है, वो बुल्ले शाह जी ने भी दिया है, वो पतन्ना जी और वैमन्ना जी ने भी दिया है, वो पंच सखा ने भी दिया है। यानी कि हर किसी ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा ने ये फैसले दिए हैं कि ऐसी अवस्था वाले महत्ता रखने वाले हैं, जागरूक जो हो गए उनकी महत्ता है। तो वो फैसले जो दिए गए हैं तो हम भी उसी अनुसार ही अपने आप की संभाल करते रहें। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा और अंत में फिर से अपनी खुशी जाहिर करेगा, जो यहाँ झुंझुनू में इतने लंबे अरसे के बाद आकर आप जहाँ आपके दर्शन हो रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से सत्संग करने का मौका मिल रहा है। और हर जगह पर जो ये यात्रा जोधपुर से शुरू हुई 14 तारीख को और 15 तारीख को जाने का अवसर मिला बाड़मेर में, और फिर 16 तारीख को जैसलमेर में, और कल 17 तारीख को बीकानेर में, और आज यहाँ झुंझुनू में, और पहले चारों ही स्थानों पे दास ने यही जिक्र किया कि राजस्थान में एक तो बहुत बरसों के बाद ये यात्रा इस तरफ की बनी, और लेकिन पिछले 6-6.5 महीने में ये राजस्थान की तीसरी यात्रा है। जो पहली यात्रा हुई अक्टूबर के महीने में, तब आपके करीब ही पिलानी सीकर चुरू में आने का मौका मिला था, और फिर सालाना संत समागम दिल्ली का नवंबर में जो होता है, उसके बाद दिसंबर जनवरी के महीने में जयपुर और केकड़ी और एक बूंदी, और साथ ही साथ सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा, इन स्थानों पे जाने का मौका मिला। थोड़ी देर भरतपुर में भी रुकने का मौका मिला था आगरा जाते हुए, और फिर उसके बाद ये यात्रा जो इन दिनों की हुई, जो आज झुंझुनू आखिरी पड़ाव इस यात्रा का है। तो कल रात को भी दास ने बीकानेर में कहा कि 6 महीने में बाकायदा तौर की 3 यात्राएं हो, ये आज तक किसी और प्रांत के हिस्से में नहीं आया, और इस तरह से यहाँ आकर आप सभी के दर्शन करने के मौके मिले, एक भक्ति वाली भावनाएं देखने को मिली, और किस तरह से आप सभी सेवा में योगदान दे रहे हैं, और ये सच का पैगाम ये आगे से आगे पहुंचाने में अपना हर प्रकार का योगदान दे रहे हैं। तो दातार कृपा करे, सबको और ज़्यादा शक्ति दे ऐसा कर गुज़रने के लिए, जहां अपनी भक्ति भी निभाते चले जाएं, भक्ति का आनंद लेते चले जाएं, वहां पर संसार का उद्धार भी करते चले जाएं। साध संगत जी धन कर।